सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
ओम शांति। किसी शहर में एक भेलपूरी बेचने वाला रहता था, जिसकी दुकान पर एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा हुआ था, जो जो सामान उसके पास है उन सब की कीमत, जो जो वो बेचता था। और वो एक ही चीज बेचता था, केवल भेलपूरी। प्राइस लिस्ट पहले था भेलपूरी 10 रुपए, फिर था स्पेशल भेलपूरी 12 रुपए, तीसरा था वेरी स्पेशल भेलपूरी 15 रुपए, फिर था एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपूरी 20 रुपए, फिर था डबल एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपूरी 25 रुपए, और छठवा था संडे स्पेशल भेलपूरी 30 रुपए। तो एक आदमी को लगा, एक एक दिन मैं एक एक ट्राई करता हूं। तो 6 दिन उसने 6 अलग अलग भेलपूरी ट्राई की, और उसे पता चला सबकी टेस्ट तो एक ही। फिर इतना अंतर क्यों? तो वो दुकानदार से पूछता है, ये क्या राज है, अंतर क्या है सब में? तो दुकानदार कहता है, पहला है भेलपूरी अर्थात नॉर्मल, दूसरा है स्पेशल भोल भेलपूरी अर्थात मैं चम्मच धो के देता हूं उसमें, तीसरा है वेरी स्पेशल भेलपूरी जिसमें थाली और चम्मच दोनों धो के देती दी जाती है, फिर था डबल स्पेशल एक्स्ट्रा स्पेशल भेलपूरी, वो क्या था? वो कहता है भेलपूरी बनाने से पहले मैं अपने हाथ धोता हूं, फिर उसको पूछता है ये डबल एक्स्ट्रा स्पेशल क्या है? वो कहता है जो पानी यूज करता हूं वो साफ वाला यूज करता हूं, और इतना बोल के चुप हो जाता है। वो ग्राहक पूछता है ये संडे स्पेशल क्या है? फिर दुकानदार कहता है संडे को मैं नहाता हूं, और जिस दिन नहा के बनाता हूं उस दिन संडे स्पेशल भेलपूरी। ये कहानी हंसी की कहानी है, शायद कोई करता भी हो, परंतु इस जीवन में भी शायद हमने ही तो वो दुकान खोल के तो नहीं रखी जिसमें दिखावा बहुत है और अंदर कुछ नहीं, जिसमें शब्द ही शब्द है सार कुछ नहीं। लॉन्ग टंग शॉर्ट हैंड, इंग्लिश में कहावत है, जबान बहुत बड़ी हाथ बहुत छोटे, केवल शब्द है कर्म कुछ नहीं, केवल भाषण है बातें है धारणा कुछ नहीं। इसी को दूसरे शब्दों में हिंदी में कहा जाता है ऊंची दुकान और फीका पकवान, जहां पर शब्द है केवल बातें है केवल अपने मुंह से अपनी तारीफ है केवल, और अंदर खोखला है, अंदर खाली है, अंदर कुछ नहीं है। तो क्या इस ब्राह्मण जीवन में भी हमारी भी स्थिति ऐसी तो नहीं कि जिसमें हम केवल दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं, ज्ञान का, योग का, तपस्या का या फिर सेवा का, और अंदर से इच्छाएं है, स्वार्थ है, मैं के विस्तार की कामना है, नाम की कामना है, प्रशंसा की कामना है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बहुत प्रशंसा हो और अपने ही मुख से अपनी ही तारीफ करता है। सोचने की बात है क्यों ऐसा करता है वो? मुरलियों में आता है मियां मिट्ठू, सेल्फ प्रेज। बहुत गहराई से चिंतन किया जाए तो पता चलता है हर एक के अंदर इच्छा है कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं। एक दूसरा, कहीं ना कहीं डर है कि लोग मुझे निग्लेक्ट ना कर दे, मेरे तरफ कम ध्यान ना दे दे। तीसरा, बहुत अहंकार भरा है अंदर और वो अहंकार तृप्ति चाहता है। चौथा, हर एक व्यक्ति को स्तुति सुनना बहुत प्रिय लगता है। पांचवा, कंपैरिजन है, तुलना करता है दूसरों के साथ। छठवा, जेलसी ईर्ष्या है, वो चाहता है कि दूसरे से मैं आगे जाऊं, और ये ईर्ष्या वश वो अपनी ही तारीफ करता है या झूठा आडंबर करता है, दिखावा करता है, ढोंग करता है, हिपोक्रेसी। और सातवां उसके अंदर हीन भावनाएं हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। वो उस हीन भावना को छिपाना चाहता है, दबाना चाहता है और ऊपर से थोपना चाहता है कि मैं भी बहुत अच्छा हूं, मैंने भी बहुत कुछ किया है। ये सात कारण हैं जिनके वश होकर व्यक्ति ढोंग करता है, आडंबर करता है, दिखावा करता है। दुकान ऊपर से बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है पर अंदर से सब कुछ फीका माल है, कोई धारणाएं नहीं है। तो क्या इस ब्राह्मण जीवन में भी ऐसी ऊंची दुकान हम खोल कर तो नहीं बैठे हैं, परंतु जिसके पकवान बहुत फीके, बेस्वाद, बेमजा, कोई रस नहीं, विरस, बेरस। तो ब्राह्मण भी कहीं कहीं ऐसा करते हैं, कहां कहां करते हैं उसकी हम चर्चा आज करेंगे। सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान सुनाना बहुत सहज काम, किसी के पास भी माइक दिया जाए तो आराम से सुना सकता है, परंतु ज्ञान सुनाने से और धारणा करने से, ज्ञान सुनाना और धारणा इन दोनों का बहुत अधिक संबंध नहीं है। हम कितना भी ऊंचा सुनाएं परंतु खुद अगर धारणा स्वरूप नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो स्वयं धारणा मूर्त है वो जब कहे कुछ तो ही परिणाम होगा, तो ही तीर लगेगा, तो ही शब्द में जौहर होगा। जो स्वयं भोग और विलास में डूबा है उसकी वाणी में वो तेज नहीं होगा। तो सबसे पहली बात है कि जो ज्ञान हम दूसरों को सुनाते हैं सबसे पहले क्या करना है, खुद धारण करना है। दूसरों को हम सुनाते हैं अमृत वेला उठो, हम स्वयं कितना उठ रहे हैं। दूसरों को हम सुनाते हैं मुरली सुनो, मुरली पढ़ो, मुरली का चिंतन करो, सारे दिन भर हमने कितना किया। दूसरों को हम सुनाते हैं ज्ञान का प्रयोग करो, हमने अपने जीवन में ज्ञान का प्रयोग कहाँ तक और कब तक किया। ये बताना बहुत आसान है कि निंदा स्तुति जय पराजय हानि लाभ सब में समान रहो, पर जब हमारी निंदा हुई, जब हमारा पर जब हम पराभूत हुए, जब हमारी हार हुई, तब हमारी स्थिति क्या थी। ये किसी को कहना बहुत आसान है कि ड्रामा, पर खुद के साथ अगर कुछ होता है तो दूसरों को, किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया, उसको बताना बहुत आसान है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पर जब हमारा अपना कोई जाता है तब हमने कितना उस ज्ञान को अप्लाई किया है। जीवन में कठिन और विकराल परिस्थिति आ गई अचानक से, अब तक दूसरों को सिखाते रहे ऐसा ऐसा करो, पर हमारे ही जीवन में परिस्थिति आ गई, हमने उस ज्ञान को कहां तक अप्लाई किया। तो ज्ञान केवल सुनने का विषय नहीं है, ज्ञान सुनाने का विषय नहीं है, ज्ञान भाषण का विषय नहीं है, ज्ञान केवल लिखने का विषय नहीं है। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात धारणा, ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब तक उसको अप्लाई ना किया जाए वो केवल किताबी ज्ञान है बस, और कुछ नहीं। हम कितना भी कहे कि हम ज्ञानी हैं वो केवल ऊंची दुकान है। ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है। क्या है फिर ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु? क्या है? अभिमान? ना, ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है ज्ञानी होने का भ्रम। ज्ञान का शत्रु है ज्ञान का भ्रम। मैंने जान लिया है, ये अहंकार। कल की साकार मुरली, कोई कोई बच्चे मगरूर हो जाते हैं, समझते हैं हमने सब जान लिया, हमें मुरली सुनने की आवश्यकता नहीं है। मुरली ज्ञान का था भंडार है और हमने सब जान लिया। सागर है वो सागर, कितना हमने जाना है, हमारी कोशिशें कितनी यथार्थ है क्या पता। यूनान का महान दार्शनिक सुकरात का शिष्य अरस्तु, एरिस्टोटल, एक बार जो कि जीवन के महानतम विचारों में हमेशा खोया रहता था, जीवन के रहस्य को सुलझाने के लिए विचार करता था, दार्शनिक था, थिंकर, एक बार समुद्र तट पर घूम रहा था तो देखता है एक मनुष्य क्या कर रहा है, एक चम्मच से सागर का पानी ले रहा है और समुद्र तट पर एक गड्ढा है उसमें डाल रहा है, भाग रहा है, सागर का पानी ले रहा है, गड्ढे में डाल रहा है, भाग रहा है, सागर का पानी लेकर गड्ढे में डाल रहा है। अरस्तु उससे पूछता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, सागर को सुखा रहा हूं, सागर का सारा पानी मुझे इस छोटे गड्ढे में डालना है। अरस्तु कहता है, अरे मूर्ख, अजीब पागल हो तुम तो, ये कभी हो सकता है क्या? यह असंभव है। वो व्यक्ति कहता है, क्यों असंभव है, तुम भी तो वही कर रहे हो। वो कहता है, मैं क्या कर रहा हूं मैं? वो व्यक्ति कहता है, ज्ञान इतना अथाह है, सागर है, तुम भी तो अपनी छोटी सी खोपड़ी में उस ज्ञान को भरने की कोशिश कर रहे हो। तुम में और मुझ में क्या अंतर फिर? तुम भी तो वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं। और अहंकार कितना कि मैंने पा लिया, मैं ज्ञानी बन गया। कैसा ज्ञान, क्या हमने पाया है? जिसको हम ज्ञान कहते हैं, क्या वास्तव में वही ज्ञान है या केवल सूचनाएं हैं? ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये परमधाम है, ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा तन में आया है, अब घर वापस जाने का समय है, ये संगम युग है, विनाश सामने खड़ा है, दिव्य गुण धारण करने हैं। छोटे बच्चे को भी सिखा दो तो ये सीख जाएगा और तोते जैसा रटना चालू कर देगा। क्या ज्ञान है या सूचनाएं हैं? शायद सूचनाएं हैं। ये सूक्ष्म वतन है, वो परमधाम है, वो स्वर्ग है। सूचनाएं एकत्र की है थोड़ी सी, और कैसा अहंकार उसका, कैसी तुच्छ दृष्टि से हम दूसरों को देखते हैं। कोई कोर्स करा रहा है किसी को, कोर्स तो करा रहे पर अंदर से भावना कितनी है और कैसी है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। क्या यही भावना है कि इसका भी कल्याण हो जाए, या ये भावना है कि तुम नहीं जानते, अब हम तुमको बताएंगे आत्मा क्या है, अब हम तुमको बताएंगे परमात्मा क्या है। क्या ये ज्ञान है? ज्ञान के साथ अहंकार, ज्ञान के साथ ज्ञानी होने का भ्रम, ये केवल फीका पकवान है। ज्ञानी हम अभी हुए नहीं है। ज्ञानी की प्रथम निशानी है विनम्रता। थोर गर्व नाधरी अभिवाचा हा स्वभाव उपकार पराचा। अगर ज्ञान अहंकार को उत्पन्न कर रहा है तो वो ज्ञान नहीं है। हमेशा ये भाव हो कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं जाना, अभी मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर हमसे कोई प्रश्न पूछे कि हम कभी ये कहते कि मुझे अभी इसका उत्तर पता नहीं, मैं जरा सोच के बताता हूं, हमेशा हमारे पास उत्तर तैयार है। अगर ज्ञान योग से संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो हमको याद है, एक बहन ने एक प्रश्न हमको पूछा था, एक विदेश की बहन ने जो कि 40 साल से अधिक ज्ञान में चल रही है, उसने हमको पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? अब मुझे ये उत्तर मत देना जो मैं जानती हूं, तुम कौन हो? ये उत्तर ना देना, मैं आत्मा हूं और मैं वो सब मुझे मत देना। क्या तुमको पता है तुम कौन हो? क्या वास्तव में मुझे पता है मैं कौन हूं? हर एक अपने आप से ये प्रश्न पूछे, क्या वास्तव में मैंने जान लिया है? शायद नहीं। दूसरों को हम ये बताना चाहते हैं कि हमने भगवान को पाया। तुम जिसे भगवान समझते हो भगवान नहीं है, इसमें भी अहंकार है। अरे मूर्ख, किसकी पूजा कर रहे हो? हनुमान, ये कोई भगवान है क्या? हम बताएंगे तुमको भगवान क्या है। अहंकार, ज्ञान का अहंकार। सबसे पहली बात है ज्ञान, ये स्वीकार करना कि मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है, अभी मैं सीखूंगा, अभी सीखना चालू है। जैसे एक सूफी संत खड़ा था और वो देखता है एक छोटा सा बच्चा दिया लेकर मस्जिद की तरफ जा रहा है। उस सूफी संत को लगता है चलो थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। उस छोटे से बच्चे को पुकारते हैं, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है दिया लेके मस्जिद में जा रहा हूं। वो सूफी संत कहता है ये जो दिया है इसमें ये जो रोशनी है ये कहां से आई बताओ? प्रश्न पूछता है कि ये जो दिया है इसमें जो ज्योत है उसकी रोशनी कहां से आई? तो छोटे बच्चे ने क्या किया पता है? दिए को फूंक दिया, मार दी, फूंक मार दी और दिया बुझ गया और कहा कि वहीं से जहां वो अब चली गई। सूफी संत बायजीत सोचने लगा ये मैंने क्या पूछ लिया, कितना अहंकार था मुझे कि मैं दूसरों से प्रश्न पूछूं, देखूं इसका कितना ज्ञान है, कितना इनको आता है, इस भाव से प्रश्न पूछ रहे। हम देखते हैं सभाओं में लोग बहुत प्रश्न पूछते, प्रश्न पूछने का उद्देश्य उत्तर नहीं होता है, उत्तर तो उन्हें पहले ही पता है। प्रश्न पूछने का उद्देश्य है मैंने प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछने में रस है, उत्तर में इंटरेस्ट ही नहीं है, उत्तर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रश्न पूछते क्या किया जाए, ये हिसाब किताब बन रहे हैं या चुपतू हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं। ड्रामा फिक्स है या हम ड्रामा को बदल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं। उत्तर तो पहले ही पता है पर इंटरेस्ट उत्तर में नहीं है, इंटरेस्ट प्रश्न में, इंटरेस्ट मैंने पूछा इसमें है, इंटरेस्ट दिखावे में है। दादियां आई हुई है, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछते हैं। दूसरा, प्रश्न इसलिए पूछते हैं ये जानने के लिए कि तुमको आता है कि नहीं, ये देखना है। गीता में लिखा है जब गुरु के पास जाओ तदविद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंतिते ज्ञाने न ज्ञानीनाम तत्वदर्शनाम। जब गुरु के पास जाओ तो इस भाव से नहीं जाओ कि मैं ये सीखूं, ये देखूं कि गुरु को पता है कि नहीं, परिप्रश्ने न सेवया, उसकी सेवा करने के लिए जाओ। तदविद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंतिते ज्ञाने न, फिर वो उपदेश करेगा ज्ञान का, ऐसे ही उपदेश नहीं करेगा, पहले उसकी जाकर सेवा करो, विनम्र भाव से उसके सामने सर झुकाओ, फिर उपदेशंतिते ज्ञाने न ज्ञानीनाम तत्व दर्शनाम, वो तत्व का वो ज्ञान देगा जो परम तत्व है। इस भाव से नहीं कि मैं इसको टेस्ट करूं, यह अहंकार है। ज्ञानी को अहंकार शोभा नहीं देता, ज्ञानी की तो पहचान ही विनम्रता है, ज्ञानी का तो कवच ही विनम्रता है, और विनम्रता के कवच को कोई भी अहंकार का तीर काट नहीं सकता। इसके लिए ज्ञान को तो बढ़ाते जाना है पर यह भी निरंतर याद रखना है कि हमने अभी कुछ नहीं जाना। हम हो बहुत समय से ज्ञान में है, एक छोटी सी कन्या अभी अभी ज्ञान में आई है, अभी अभी सेंटर पर आई है, एक ही वर्ष हुआ है, उम्र बहुत छोटी है, 15 वर्ष। हम सोचते हैं बहुत छोटी कन्या है, इसको क्या पता। अरे पर वो कौन है, क्या तपस्या कर कर आई है पिछले जन्म में, किसको पता। हो सकता है इसी ब्राह्मण कुल की है सेकंड बर्थ बिके। जो संस्कार हमारा अब तक नहीं छूट रहा है 50 साल से ज्ञान में चलने के बाद, उसमें तो वो विकार है ही नहीं। ज्ञान में हम कब से चल रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम में ज्ञान कब से चल रहा है। कोई कहता है हम 20 साल से ज्ञान में, ज्ञान कितने साल से तुम में है, ये दूसरा प्रश्न है। ज्ञान में तो आ गए, पर ज्ञान तुम में आया क्या? शायद नहीं। और ज्ञान की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। जिसको हमने ज्ञान समझा है वो केवल इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं है। जो हम सुना रहे हैं वो केवल प्रचार है। जैसे एक सेंटर की बहुत बड़ी बहन ने हमको एक बात बताई थी, उसने कहा था जब मैं युवा थी 25 वर्ष की, अभी अभी ज्ञान में आई, इतना नशा चढ़ा था, इतना नशा चढ़ा था, जो मिला उसको पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाती थी। ट्रेन में जा रही थी एक बार तो सबको ज्ञान सुनाने लगी। उस ट्रेन में एक बहुत मैच्योर्ड एक महिला बैठी थी जो बहुत ज्ञानी थी, संसार की दृष्टि से प्रोफेसर थी। तो उसने जब देखा मैं इस तरह से सेवा कर रही हूं, तो उस बहन ने इस सेंटर की बहन को क्या कहा पता है? तुम क्या कर रही हो? तो ये बहन कहती है सेवा। वो कहती है ये सेवा नहीं है, ये प्रचार है। तुम सेवा नहीं कर रही हो, ये प्रचार कर रही हो। उसको इतना धक्का लगा अंदर से, और शायद ज्ञान सुनाने का अधिकार भी उन्हीं को है जो उसके स्वरूप है, नहीं तो वो केवल ऊंची दुकान और फीका पकवान है। यूरोप का बहुत महान लेखक W.H. लॉरेंस ने अपनी एक संस्मरण लिखा है कि एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और पूछने लगा, अंकल ये एक झाड़ के पत्ते हरे क्यों है? झाड़ के जो पत्ते हैं वो हरे क्यों है? मैं सोचने लगा, लेखक ने लिखा, क्या बताऊं इस बच्चे को, क्योंकि कुछ भी उत्तर दूंगा तो उसके आगे और एक प्रश्न खड़ा होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि इसकी में क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल हरा क्यों है, प्रश्न तो वही रहा। और वो कहता है कि मैंने उस बच्चे को कहा, बेटा अभी मुझे पता नहीं है, मैं जब पता कर लूंगा ना तब तुमको बताऊंगा। और हमसे अगर कोई पूछे तो कहेंगे चुप, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे, ये फालतू प्रश्न मत पूछा कर, हम चुप कर देते। छोटे बच्चे जिज्ञासु होते, क्यूरियस होते, जानना चाहते ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। और उसकी वो क्यूरियोसिटी, वो उत्कंठा, वो आतुरता हम दबा देते, फिर वो कोई प्रश्न नहीं पूछता। जो पढ़ाई है, जो किताब है, वो पढ़ते रहता है बस, और एक मशीन बन के निकलता है कॉलेज से बस, और कुछ नहीं। तो ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात धारणा, ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ज्ञान अर्थात अनुभव, ज्ञान अर्थात परिवर्तन। वो ज्ञान जो परिवर्तन नहीं ला रहा है वो ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहली बात है ज्ञान, दूसरा है योग। सभी योग करते हैं। कोई कहता आज मेरा बहुत अच्छा योग लगा, फिर कहता आज मेरा अच्छा नहीं लगा। योगा इज द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट डूइंग। योग कोई करने का विषय नहीं है, होने का विषय है। अभी योग कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, अभी योगी अभी वियोगी। और योग का भी अहंकार, योग का भी घमंड, योग का भी दिखावा, आज हमने 8 घंटा योग किया, आज हम 2 बजे उठ के योग कर रहे थे, उसका भी विवरण विस्तार करते। योग फिर से कह रहे, करने का विषय नहीं है, होने का विषय है। मेडिटेशन इज द स्टेट ऑफ बीइंग नॉट डूइंग। वास्तविक योग तो तब चालू होता है जब कर्म क्षेत्र में हम उतरते हैं, तब नहीं जब बाबा के कमरे में बैठे, तब नहीं जब अमृत वेला उठ रहे, जब हम एंट्री करते हैं बाबा के कमरे के बाहर, वो योग है, वो योग का पीरियड चालू होता है तब से। तो उस योग को बढ़ाना है, बार बार बाबा का आह्वान, बार बार बाबा का दिनचर्या में शुक्रिया, बार बार उससे जुड़े रहना। और कल हमने जो यहां एक्टिविटी कराई थी, सारे संबंध एक से जोड़ना। कार में बैठ के जा रहे हैं तो मेरा ड्राइवर स्वयं भगवान है, एक एक संबंध, एक एक जो कल इतने सारे संबंध लिए थे उसका अनुभव करना है। अकेले जा रहे हैं तो बाबा छत्र छाया है। इसके पहले भी 1-2 बार सुना चुके हैं। एक बहन ने मुझे अपना अनुभव सुनाया था, सेंटर की बहन ने, उसने कहा था ये अनुभव मैंने आज तक किसी को नहीं सुनाया और डर लगता है अगर किसी को सुनाऊंगी तो लोग कहेंगे ये तो ऐसी झूठ मूठ बोल रही है, पर आपको सुना रही हूं। उस सेंटर की समर्पित बहन ने बताया, एक बार जब मैं विदेश में थी तब शाम के समय गीता पाठशाला की तरफ जा रही थी, सुनसान रास्ता था और चलते 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 झाड़ियां रखी थी और जैसे ही पैर रखा वो दलदल था, मैं उसमें घुस गई और घुटनों तक उसमें घुस गई और घुसती चली जा रही हूं अंदर 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 अंदर, इधर उधर देखा कोई भी नहीं है, सुनसान जगह है, किसको पुकारे। अंदर 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 जा रही है वो दलदल के अंदर और एकदम से बाबा को याद किया, बाबा मेरी रक्षा कर, यदि तुझको मुझसे सेवा लेनी है तो मेरी रक्षा कर। आर्तनाद, आर्त पुकार, दिल से पुकारा और वो धस्ती चली जा रही है अंदर 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 पेट तक उस दलदल के अंदर और एकदम से जैसे बेहोश हो गई। बाबा को याद करते करते और थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुली वो दलदल से बाहर थी, उसने देखा आसपास कोई भी नहीं था, उसने कहा ये हुआ किसको सुनाऊं, दूर दूर तक देखा किसने मुझे निकाला, कोई भी नहीं था। और उसकी साड़ी पूरी कीचड़ से भर गई, फिर वहां एक नल था वहां जाके उसने धोया और फिर गीता पाठशाला गई। उसने कहा ऐसा हो गया और कैसे बाबा ने मेरी रक्षा की, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी, बस अभी अंतिम क्षण था जीवन का, मरने वाली थी, गई थी उस दलदल में, ऐसा पुकारा बाबा को जो आज तक कभी नहीं पुकारा था और दूसरे क्षण दलदल से बाहर। बेहोश थी, आंख खुली तो देखा वो दलदल वहां वो बाजू में बैठी। उसने कहा ये पता नहीं मुझे कैसे हुआ क्योंकि कोई नहीं था बचाने वाला। योग, परमात्मा प्रेम, कहीं इसका ढोंग तो नहीं, आडंबर तो नहीं। हम कहते हैं योग भट्टी, हम भट्टी के लिए जा रहे हैं, पर यहां आकर कितना हमने योग किया, या बुद्धि और कहीं कहीं जा रही थी, कितना अपने आप को परिवर्तित किया, संकल्प किए, कहीं इसमें आडंबर तो नहीं। तीसरा है और सबसे बड़ा सब्जेक्ट, सेवा। वर्तमान समय सेवा का सबसे अधिक विस्तार है यज्ञ में। पर जो भी सेवाएं कर रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखनी है, सेवाएं करो और भूल जाओ, निष्काम। हमेशा हम मम्मा का उदाहरण देते, मम्मा डेढ़ मास तक बेंगलोर में थी, बहुत सारी सेवाएं की, वापस आई। मम्मा को पूछा, मम्मा सेवा कैसी थी? मम्मा ने कहा, अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस, नो डिस्क्रिप्शन, कोई वर्णन नहीं, कुछ नहीं। सेवा कैसी थी? अच्छी थी, बस। वो मम्मा के साथ जो भाई गया था, उसने बताया, मम्मा ने इतनी सेवा की, ये किया, वो किया, यहां गई, वहां गई, इससे मिली, उससे मिली, पर मम्मा कुछ नहीं। हम क्या कर रहे हैं? क्या वास्तव में हम कुछ कर रहे हैं? जो कुछ संगम युग पर हो रहा है, परमात्मा कृपा, परमात्मा दया से हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। वो यदि हट जाए तो हम कुछ हैं? यदि उसकी कृपा हम पर, हमसे हट जाए, तो अभी जिस हॉल में हम बैठे हैं, हम यहां नहीं होते शायद। भक्ति में कहते, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। महान आत्माओं का दर्शन होना, अर्थात परमात्मा कृपा हम पर हुई है। इतनी सारी महान आत्मा एक साथ एकत्र हुई है, इतनी आत्माओं का एक साथ दर्शन होना, अर्थात हम पर कृपा बरस रही है। इसका प्रमाण क्या है कि प्रभु की कृपा मुझ पर है? प्रमाण यही है, इतने सारे संत मिल रहे हैं, इतनी सारी महान आत्मा एक साथ एक धरती पर मिल रही है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, वो अवतार संसार में जब आता है तो क्रांति करता है। इतने सारे अवतार एक साथ जब धरती पर उतरेंगे तो कैसी क्रांति होगी? हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। दादियों ने जो सेवाएं की, उसके सामने हमारी सेवाएं क्या है? कुछ भी नहीं है। विदेश की एक बहन ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम सब नल है, नल टंकी ऊपर है, पानी इस टंकी से आ रहा है, उस नल को अहंकार हो जाए कि मैं पानी लाता हूं, तो क्या कहेंगे? आज पानी इस नल से आ रहा है, कल उस नल से आना बंद हो जाएगा, इस दूसरे नल से आएगा। हम केवल नल है, हमको तो चुना गया है, इसमें अहंकार कैसा? किस बात का अहंकार कि हमने ये सेवा की? क्या हम नहीं होते तो नहीं होती सेवा, और अच्छी होती। तुम ही बाधा हो, हटो वहां से। मैं नहीं रहूंगी तो ये सब कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? क्या ब्रह्मा चला गया, यज्ञ रुका क्या? बिल्कुल नहीं रुका। 24 जून की मुरली थी, अभी अभी चली, 2019 मम्मा डे, मम्मा चली गई। बच्चे बाप से पूछते, बाबा हमारी मम्मा चली गई, दुखी है? बाबा कहते, अब तुम्हारी बारी है, मम्मा गई ना, अब तुम भी जाओगे। सेवाएं हम करें परंतु अहंकार नहीं, सेवाएं हम करें परंतु निष्काम भाव, सेवाएं हम करें परंतु आत्माभिमानी स्थिति, सेवाएं हम करें परंतु परमात्मा याद में, सेवाएं हम करें परंतु श्रीमत अनुसार, सेवाएं हम करें परंतु त्रिकालदर्शी स्थिति में, सेवाएं हम करें परंतु साक्षी भाव में, सेवाएं हम करें परंतु डिटैच्ड, सेवाएं हम करें परंतु अटेंशन के साथ, सेवाएं हम करें परंतु एकाग्रता के साथ, वो कर्मयोग है। नहीं तो सेवा व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। मैंने ये सेवाएं की, वो मैं का सेवा का समाचार नहीं सुनाते, मैं का समाचार सुनाते, मैंने क्या क्या किया। इसके लिए बहुत हमने सेवा की, हमने बहुत भाग दौड़ की, और जब बहन जी ने सबके नाम गिनाए, धन्यवाद किया, हमारा नाम ही नहीं लिया, लोग दुखी हो जाते, हम कहां हैं? कुमार दुखी हो जाते, मोटरसाइकिल पे हम भाग रहे थे सुबह से लेकर रात तक, सेवा का समापन हुआ, बहन जी ने सेवा का समाचार सुनाया, हमारा नाम ही नहीं लिया। नाम लेने की क्या आवश्यकता है? ऊपर जमा हो गया है, ऊपर का बैंक ऑटोमेटिक है, पुण्य किया अपने आप जमा होता है, यहां कोई तारीफ करे या न करे इससे उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे एक कहानी है विदेश की, जिसमें दिखाया एक व्यक्ति इतना पुण्य आत्मा होता है, इतना सबको सुख देता है, इतनी सबकी सेवाएं करता है कि स्वर्ग से फरिश्ते आ जाते हैं उसके पास और कहते हैं बता तुझे क्या चाहिए। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है। वो कहता है नहीं, हम तुमसे बहुत खुश हैं, भगवान ने हमको भेजा है, तुम्हें कुछ तो मांगना पड़ेगा। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो फरिश्ते वापस भगवान के पास लौटते, भगवान को कहते हैं वो कुछ नहीं मांगता। भगवान कहता है नहीं, तुम्हें देना पड़ेगा, जाओ फिर से जाओ। वो फिर आते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ तो लो। वो कहता है ठीक है, मुझे ऐसी एक शक्ति दे दो कि मैं, वो फरिश्ते कहते हैं हम तुम्हें ऐसी शक्ति देते हैं कि जिसको तुम हाथ लगाओगे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम तुमको ऐसी शक्ति देते हैं कि जहां झरने में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, कुएं में पानी नहीं है, तुम हाथ लगाओ तो उसमें पानी आ जाए। तुमको ऐसी अद्भुत शक्ति हम दे रहे हैं कि कोई बहुत दुखी है, तुम्हारा स्पर्श होते ही वो ठीक हो जाए, सुखी हो जाए। वो कहता है ठीक है, ये सब मुझे दे दो, परंतु एक शर्त है, ये मेरे हाथ लगाने से ना हो, मेरी परछाई से हो, ताकि जिसका मैं कल्याण करूं उसको भी ये ना पता चले कि वो मेरी परछाई है। मैं गुजरू, कोई बीमार है, मेरी परछाई उसको लग जाए, परंतु उसे ये पता ना चले कि मेरी परछाई है। मैं गुजरू, तालाब झरने सूखे पड़े हुए भर जाए, परंतु मेरी वजह से हुआ ये किसी को पता ना चले। आज उस व्यक्ति को विदेश में कहते होली शैडो, परछाई, पवित्र परछाई, परंतु वो कौन व्यक्ति था उसका कोई खबर नहीं, क्योंकि हमारा नाम की क्या आवश्यकता है, सेवा हो गई बस, बाबा की सेवा है, हो गई, हम करें या कोई और करे, परंतु सेवा का दिखावा करना, बहुत दिखावा, आडंबर करना, सेवा इतनी सी, उसका प्रचार इतना। एक छोटी सी सेवा, 100 फोटो और भेजना चालू इसको, इसको देखो अब हमारे फोटो, यही तुम्हारी सजा है, देखते बैठो, और देखने के बाद भी अगर ऐसा नहीं भेजा तो फिर उदास, हम भी नहीं भेजेंगे अगली बार। तो सेवाएं, सेवाओं को निष्काम कर देना है। सूरज भाई जी एक उदाहरण बताते हैं, हमेशा काल्पनिक, कहते हैं एक बहन बहुत सेवाएं की, शरीर छोड़ा, बाबा के पास पहुंची, काल्पनिक कहानी। बाबा ने कहा बच्ची बताओ तुमने क्या क्या सेवा की, उसने नहीं बताया खुद, भगवान ने पूछा बताओ तुमने क्या क्या सेवा की, वो अपनी कहानी चालू कर दी, बाबा मैंने इतने सेंटर खोले, बाबा मैंने इतनी कन्याओं को तैयार किया, बाबा इतने लोगों का कोर्स कराया, इतने लोगों को ज्ञान में लाया, इतने लोगों को मधुबन में लेके गई, इतने लोगों का ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, याऊं किया त्याऊं किया, और लास्ट में बाबा कहते हैं बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया, ये सब मैं कर रहा हूं, तुमने क्या किया। तो पहला ज्ञान विनम्र बनाए, दूसरा योग जो निरंतर रहे, तीसरा सेवा जो निष्काम हो जाए, चौथा बोलना, भाषण, भाषण भाषणा देने वाला हो, भाषण रटा हुआ ना हो, पैरट लाइक तोते जैसा, भाषण अनुभव युक्त हो, नहीं तो भाषण बहुत ऊंचा ऊंचा। एक बार एक बहन टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कराने जा रही थी, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, बाहर उतरी, कुछ खरीदने लग गई और ट्रेन छूट गई। किस लिए जा रही है? टाइम मैनेजमेंट, और ट्रेन छूट गई। और इससे बड़ी बात तो एक भाई की है, जो ब्रह्मा कुमारी की ओर से एक पब्लिक फंक्शन में गए और सबको कहा कि मेरे क्लास में किसी का भी मोबाइल अगर बजा तो देख लेना, सब अपना अपना मोबाइल बंद कर दो, क्लास में एक का भी मोबाइल नहीं बजना चाहिए। सब ने फटाफट अपना मोबाइल करो, और 10 मिनट क्लास चालू हो गया, उसका खुद का ही जोर से मोबाइल बजा। अब क्या करें? एक बहन जी ने एंगर मैनेजमेंट पर कोर्स कराया, क्लास एक घंटा क्लास, बहुत पावरफुल, तालिया 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 तालिया। ऑडियंस में से एक भाई नीचे आया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछे, उसको इतना क्रोध आया, चुप, ये भी कोई क्वेश्चन है? अभी तो क्लास में सुनाया ना सब, फिर भी पूछते हो? क्रोध। भाषण, उसके बाद में अगला है लिखना, राइटिंग। कई लोग लिखते बहुत अच्छे हैं, परंतु केवल लिखते, आचरण में कुछ नहीं है। मराठी में एक संत है तुकाराम महाराज, उन्होंने लिखा है, बोले तैसा साले त्याची वंदना पाऊले, अंगे झाड़ी न अंगन त्याचे दायित्व करी न। लिखते हैं, अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए वो करता है जो वो बोलता है, बोले तैसा साले त्याची वंदना पाऊले, उसके मैं पाँव पड़ूंगा और क्या करूंगा, अंगे झाड़ी न अंगन, उसका जो आंगन है अपने शरीर से झाड़ूंगा उसको, ऐसा मुझे केवल व्यक्ति दिखा दो। है ही नहीं कोई, सब झूठ बोलने वाले, बोलते कुछ करते कुछ, सोचते कुछ और। तो हमारी ऐसी ऊंची दुकान और फीका पकवान ना हो। सज्जन रे, झूठ न बोलो, खुदा के पास जाना है, सारा झूठ बाहर आएगा एक दिन। इसके लिए सत्य के मार्ग पर चलना है। तो अभी हम कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे, और उसके पहले जो अभी अभी बहन ने गीत सुनाया, सबको समझ में आया है गीत? हमने सुना है ये जो कन्नड़ है, बहुत पुरानी वाली कन्नड़ है, कन्नड़ा भाषा नई वाली नहीं है, बड़ी डिफिकल्ट है। कुवंपू का ट्रांसलेशन किया हुआ ये गीत, अभी अभी पांडव भवन में इस पर एक क्लास भी कराई थी बड़ी सी। ये गीत हमने बहुत पहले सुना था, बहुत पहले, और जब पहली बार सुना था बहुत बड़ी सभा थी, बहुत सारे सन्यासी वृंद बैठे हुए थे, और उसमें ये गीत, तत्वमसी अंधरुत साधु हाड़ु सन्यासी, और बैठे बैठे अशरीरी हो गए थे। ओरिजिनल गीत इंग्लिश में है, 1895, थाउजेंड आइलैंड पार्क, न्यूयॉर्क में लिखा हुआ ये गीत है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। जब वो वहाँ पर कुछ समय रुके थे, थक गए थे भाषण कर करके पूरे देश भर, और कुछ समय वहाँ पर उनके पास कुछ सच्चे साधक आए, जनरल पब्लिक में से निकले हुए, कि जिन्होंने कहा कि हमको वास्तव में अध्यात्म क्या है सीखना है, उनके छोटे ग्रुप का वो प्रवचन वहाँ दे रहे थे। और एक शाम या रात, बहुत बारिश हो रही थी, उस एक जंगल था छोटा सा, वहाँ गए, वहां पर उनको समाधि का अनुभव हुआ और अपने कमरे में आकर ये गीत लिखा था. द सॉन्ग ऑफ सन्यासिन ओरिजिनल लिखा है इंग्लिश में, 9 stanzas, 13 stanzas है इसमें. और ये गीत राष्ट्रकवि कुवेंपू ने ट्रांसलेट किया है कन्नड़ भाषा में, जो गीत अभी आपने सुना. तो इस गीत में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वैराग्य की है, बहुत सारी बातें अशरीरीपन की है, बहुत सारी बातें धर्म की है, नीति की है, नियम की है, मर्यादाओं की है, ब्रह्मचर्य की है, पवित्रता की है. ओम शांति.